नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। फ्रेडरिक पी ब्रुक्स जूनियर की पुस्तक द डिजाइन ऑफ डिजाइन कंप्यूटर वैज्ञानिक के निबंध डिजाइन की प्रक्रिया पर केंद्रित चिंतनशील निबंधों का संग्रह है। यह केवल सॉफ्टवेयर डिजाइन की किताब नहीं है, बल्कि वास्तुकला, इंजीनियरिंग, उत्पाद निर्माण और जटिल संगठनों में होने वाले डिजाइन के साझा सिद्धांतों को समझने का प्रयास है। ब्रुक्स अपने लंबे अनुभव, विशेषकर IBM के बड़े कंप्यूटर परियोजनाओं से जुड़े काम तथा अनेक उत्कृष्ट डिजाइनरों से हुई बातचीत के आधार पर पूछते हैं कि प्रभावी और सुरुचिपूर्ण डिजाइन आखिर बनता कैसे है। पुस्तक का उद्देश्य कोई एक कठोर चरणबद्ध विधि देना नहीं है, इसके बजाय यह उन स्थायी दबावों और निर्णयों की जांच करती है जिनसे हर वास्तविक डिजाइन गुजरता है, जैसे सीमित बजट, उपयोगिता, सौंदर्य, उपकरण, परीक्षण और टीमों के बीच समन्वय। अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरणों के माध्यम से ब्रुक्स दिखाते हैं कि डिजाइन को अनुभवजन्य ढंग से परखना पड़ता है। यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डिजाइन को केवल तकनीकी निष्पादन नहीं बल्कि विकल्पों के बीच जिम्मेदार निर्णय मानते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डिजाइन को समस्या समाधान नहीं, विकल्पों की संरचना के रूप में देखना। ब्रुक्स के लिए डिजाइन का अर्थ किसी पहले से निश्चित उत्तर तक पहुंचना नहीं है। डिजाइनर को एक ऐसे संभावित क्षेत्र में काम करना पड़ता है जहां अनेक समाधान संभव होते हैं पर सभी समान रूप से उपयोगी, सुंदर, सस्ते या विश्वसनीय नहीं होते। इसलिए डिजाइन की मूल चुनौती विकल्पों की सूची बढ़ाना नहीं बल्कि उनके बीच सही संरचना और प्राथमिकता बनाना है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हर डिजाइन कुछ उद्देश्यों, सीमाओं और मानवीय अपेक्षाओं का संतुलन है। उदाहरण के लिए, किसी भवन, कंप्यूटर प्रणाली या उपभोक्ता वस्तु में एक सुविधा जोड़ने से लागत, जटिलता, रखरखाव और उपयोगकर्ता अनुभव बदल सकता है। अच्छा डिजाइनर इन प्रभावों को अलग अलग नहीं देखता, वह पूरे तंत्र पर उनके संयुक्त परिणाम को समझने की कोशिश करता है। ब्रुक्स की दृष्टि में डिजाइन का काम तब बेहतर होता है जब आरंभ में ही महत्वपूर्ण निर्णयों को पहचान लिया जाए। छोटे दिखने वाले निर्णय बाद में संरचना को बांध सकते हैं, जबकि कुछ साहसी निर्णय पूरे समाधान को सरल बना देते हैं। यह विचार उन प्रबंधकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो डिजाइन को केवल समय सारिणी और कार्यों की सूची से नियंत्रित करना चाहते हैं। पुस्तक बताती है कि डिजाइन में विवेक का स्थान अपरिहार्य है क्योंकि लक्ष्य अक्सर परस्पर टकराते हैं और उनका कोई स्वचालित उत्तर नहीं होता। दूसरा, सीमाएं और बजट डिजाइन की बाधा नहीं, उसकी वास्तविक सामग्री है। पुस्तक में बजट को केवल धन की सीमा के रूप में नहीं देखा गया है। ब्रुक्स बताते हैं कि डिजाइनर कई प्रकार के बजटों के भीतर काम करता है, जैसे समय, लागत, वजन, ऊर्जा, स्थान, प्रदर्शन, विश्वसनीयता और लोगों का ध्यान। ये सीमाएं बाद में जोड़ी जाने वाली प्रशासनिक रुकावटें नहीं है, ये आरंभ से ही यह तय करती है कि कौन सा समाधान संभव, उचित और टिकाऊ होगा। इस दृष्टि का व्यावहारिक परिणाम यह है कि डिजाइन टीम को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी सीमाएं अपरिवर्तनीय हैं और किन पर समझौता किया जा सकता है। यदि यह स्पष्टता ना हो तो टीम आकर्षक विशेषताओं पर संसाधन खर्च कर सकती है और मूल उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। ब्रुक्स यह भी संकेत देते हैं कि सीमाओं के कारण सादगी का मूल्य बढ़ जाता है। हर अतिरिक्त भाग, नियम या सुविधा केवल तत्काल लाभ नहीं देती, वह परीक्षण, व्याख्या, निर्माण और रखरखाव का नया भार भी जोड़ती है। इसलिए लागत घटाना अनिवार्य रूप से गुणवत्ता घटाना नहीं है। कभी कभी वही सीमा डिजाइनर को अधिक स्पष्ट, संयमित और प्रभावी रूप खोजने को विवश करती है। यह विषय खास तौर पर बड़े तकनीकी कार्यक्रमों में प्रासंगिक है जहां संसाधन बहुत होने पर भी वे असीम नहीं होते। पुस्तक का सबक है कि अच्छी डिजाइन समीक्षा में बजट को अंत में काटने की वस्तु नहीं बल्कि डिजाइन तर्क का केंद्रीय अंग माना जाए। तीसरा, अनुभवजन्य परीक्षण से डिजाइन की धारणाओं को वास्तविकता से मिलाना। ब्रुक्स डिजाइन में अनुभवजन्य जांच की आवश्यकता पर बल देते हैं। किसी समाधान के बारे में डिजाइनर की अंतर्दृष्टि उपयोगी हो सकती है, लेकिन वह उपयोग, निर्माण या संचालन में उसके वास्तविक व्यवहार का विकल्प नहीं है। इसलिए मॉडल, नमूने, परीक्षण, तुलनात्मक प्रयोग और उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया डिजाइन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन बनते हैं। पुस्तक का व्यापक तर्क यह है कि डिजाइन संबंधी कई प्रश्न केवल तर्क से पूरी तरह हल नहीं होते। किसी इंटरफेस का सहज होना, किसी संरचना का सुविधाजनक लगना या किसी जटिल प्रणाली का संचालन योग्य होना वास्तविक प्रयोग के बाद ही अधिक स्पष्ट होता है। यह दृष्टि सॉफ्टवेयर पर भी लागू होती है जहां कागज पर संगत दिखने वाली संरचना व्यवहार में धीमी, उलझी हुई या त्रुटिपूर्ण निकल सकती है। अनुभवजन्यता का अर्थ अंधाधुंध परीक्षण नहीं है। इसका अर्थ है ऐसे प्रश्न चुनना जिनके उत्तर निर्णय को बदल सकें, फिर प्रमाण के आधार पर संशोधन करना। ब्रूक्स के निबंध डिजाइनर को अपनी पसंद और अपने अनुमान के प्रति सावधान बनाते हैं। डिजाइन प्रक्रिया में पुनरावृत्ति कमजोरी का संकेत नहीं, सीखने की व्यवस्थित विधि हो सकती है। हालांकि परीक्षण हर मूल्य निर्णय का यांत्रिक उत्तर नहीं देता, वह कल्पना और वास्तविक परिणाम के अंतर को उजागर करता है। इस कारण पुस्तक डिजाइन को एक साथ बौद्धिक, व्यावहारिक और प्रमाण से सुधारने वाली गतिविधि के रूप में प्रस्तुत करती है। चौथा, सौंदर्य और शैली उपयोगिता से अलग नहीं, डिजाइन की समझ का हिस्सा है। तकनीकी क्षेत्रों में सौंदर्य को कभी कभी बाहरी सजावट मान लिया जाता है, पर ब्रूक्स इसे डिजाइन की गंभीर चिंता के रूप में लेते हैं। पुस्तक में सौंदर्य और शैली का संबंध केवल देखने में आकर्षक होने से नहीं है। किसी डिजाइन की एकरूपता, अनुपात, स्पष्टता और आंतरिक संगति उपयोगकर्ता तथा निर्माता दोनों के लिए उसके अर्थ को बदल सकती है। जब किसी वस्तु या प्रणाली की संरचना अपने उद्देश्य के साथ सहज लगती है, तब उसका उपयोग, व्याख्या और आगे का विकास भी सरल हो सकता है। ब्रूक्स का दृष्टिकोण यह नहीं कहता कि सुंदरता को मापा जा सकता है या हर परियोजना पर एक ही शैली थोपी जानी चाहिए, बल्कि वह दिखाता है कि उत्कृष्ट डिजाइनर रूप और कार्य के संबंध पर सचेत निर्णय लेते हैं। शैली उस साझा भाषा की तरह काम कर सकती है जो किसी जटिल डिजाइन के विभिन्न भागों को जोड़ती है। इसके विपरीत, बिना संगति के जोड़े गए हिस्से उपयोगकर्ता को भ्रमित करते हैं और टीम के लिए रखरखाव कठिन बनाते हैं। यह विचार वास्तुकला से लेकर सॉफ्टवेयर तक लागू होता है, भले उसकी अभिव्यक्ति अलग हो। किसी सॉफ्टवेयर प्रणाली में नामकरण, संरचना और व्यवहार की एकरूपता भी शैली का रूप ले सकती है। इस विषय के माध्यम से पुस्तक उपयोगितावाद और सौंदर्य के कृत्रिम विभाजन को चुनौती देती है। अच्छा डिजाइन अक्सर इसलिए सुंदर प्रतीत होता है क्योंकि उसके भीतर महत्वपूर्ण संबंध स्पष्ट और संतुलित होते हैं। अंत में महान डिजाइनर का निर्माण अनुभव, प्रशिक्षण और साहसी निर्णयों से होता है। पुस्तक के अंतिम चिंतन में ब्रूक्स यह प्रश्न उठाते हैं कि असाधारण डिजाइनर किन गुणों से पहचाने जाते हैं और वे विकसित कैसे होते हैं। उनका उत्तर किसी रहस्यमय जन्मजात प्रतिभा तक सीमित नहीं है। वे अनुभव, संवेदनशीलता, तकनीकी समझ, कठोर आलोचना और विविध उदाहरणों से सीखने के महत्व को सामने रखते हैं। अच्छा डिजाइनर समस्या की सतह से नीचे जाकर यह देख सकता है कि वास्तव में किस आवश्यकता को पूरा करना है। साथ ही वह अपने आरंभिक समाधान से इतना जुड़ा नहीं होता कि प्रमाण मिलने पर उसे बदल ना सके। ब्रूक्स के अनुसार बेहतर परिणामों के लिए कई बार अधिक साहसी डिजाइन निर्णय आवश्यक होते हैं। इसका अर्थ लापरवाही से जोखिम लेना नहीं, बल्कि छोटे सुधारों से संतुष्ट रहने के बजाय संरचनात्मक विकल्पों पर विचार करना है। जटिल और वितरित टीमों में यह विशेष कठिन हो जाता है क्योंकि निर्णय कई लोगों, विशेषज्ञताओं और संस्थागत सीमाओं में बंटे होते हैं। इसलिए डिजाइन नेतृत्व का काम केवल काम बांटना नहीं, बल्कि साझा दृष्टि, स्पष्ट मानदंड और विचारपूर्ण बहस की स्थितियां बनाना भी है। पुस्तक का यह भाग शिक्षा के लिए भी संकेत देता है। डिजाइनर उदाहरणों का अध्ययन, वास्तविक परियोजनाओं में भागीदारी, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया और अपने निर्णयों के परिणाम देखने से परिपक्व होते हैं। इस तरह ब्रूक्स डिजाइन क्षमता को तकनीकी कौशल और विकसित निर्णय शक्ति के संयोजन के रूप में समझते हैं। निष्कर्ष में, द डिजाइन ऑफ डिजाइन उन डिजाइनरों, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्टों, इंजीनियरों, उत्पाद प्रबंधकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयोगी है जो जटिल काम में निर्णय लेने की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं। इसे पढ़ने वाले को तैयार नियमों की संक्षिप्त सूची नहीं मिलेगी, बदले में उसे डिजाइन की उन स्थितियों पर विचार करने की भाषा मिलेगी जिन्हें परियोजनाओं में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जैसे परस्पर विरोधी सीमाएं, परीक्षण की जरूरत, शैली की संगति और निर्णायक विकल्पों का समय। व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक किसी प्रस्ताव को केवल विशेषताओं की संख्या या आरंभिक लागत से नहीं, बल्कि पूरे तंत्र पर उसके प्रभाव से परखना सीख सकता है। बौद्धिक लाभ यह है कि पुस्तक डिजाइन को कला बनाम विज्ञान की सरल बहस से बाहर निकालती है। ब्रूक्स दिखाते हैं कि अंतर्दृष्टि, अनुभव, प्रमाण और सौंदर्य बोध एक ही प्रक्रिया में साथ काम कर सकते हैं। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता लेखक के व्यापक प्रत्यक्ष अनुभव और अलग क्षेत्रों के बीच संवाद में है। यह किसी एक उद्योग की शब्दावली में बंद नहीं रहती, फिर भी अत्यधिक सामान्य सिद्धांतों तक सीमित नहीं होती। IBM सिस्टम 360 सहित वास्तविक डिजाइन यात्राओं और व्यापक उदाहरणों के कारण इसके विचार ठोस बने रहते हैं। निबंधात्मक संरचना पाठक से धीमे, सक्रिय चिंतन की मांग करती है, इसलिए यह त्वरित कार्य पुस्तिका नहीं है। लेकिन जो पाठक डिजाइन के पीछे के निर्णय तर्क को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह लंबे समय तक उपयोगी संदर्भ बन सकती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं फ्रेडरिक ब्रूक्स जूनियर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।